ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळैयाडल पुराण की 14 भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
बच्चों, आज की इस कड़ी में हम देवी मीनाक्षी का अवतार और उनके बचपन के बारे में देखेंगे। कुलशेखर पांडियन के निधन के पश्चात इन्हीं के वंश में मलयध्वज पांडियन पांड्य देश में राजभार संभालने लगा। वह भी बड़ा धर्मिष्ठ था, मनुशास्त्र के अनुसार ही प्रशासन करता था। सुशील था लेकिन बड़ा वीर भी था। निराधार लोगों को मानो वही आधार था। पतितों को वह भगवान की तरह आश्रय देता था, भगवान की तरह ही सौलभ्य भी था, यानी कोई भी किसी भी समय उससे मनचाहे मदद मांग सकता था। राज्य चारों ओरों से सुरक्षित, सकुशल और भय रहित था। मलयध्वज अपने पूर्वजों की तरह ही शिव भक्त भी था, महादेव से अत्यंत प्रेम करता था, अनवरत उनका उपासना भी करता था।
गृहस्थाश्रम की गतिविधियों को निभाने के लिए विवाह करना अनिवार्य था। अपने लिए योग्य वधु को चोल देश की राजकुमारी ने देखा। चोल देश का राजा का नाम था शूरसेन और राजकुमारी का नाम था कांचनमाला। नाम के अनुरूप वह सोने की प्रतिमा जैसे ही सुंदर थी। पतिव्रता धर्म निभाना अपना कर्तव्य मानती थी। वह भी अपने पति जैसे ही शिव जी के भक्त थी। इतना सब कुछ होकर भी उन्हें कोई संतान नहीं था। अपने काल के उपरांत राज्यभार दायित्व लेने के लिए कोई नहीं था, इसलिए एक संतान के लिए वह तरसने लगा।
बहुत दिन दोनों प्रतीक्षा की। अंततः ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार 100 अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब 99 की पूर्ति हुई तब इंद्रलोक में इंद्रदेव डर गया और उसने मलयध्वज से कहा, तुम तो पुत्र चाहते थे ना, तुम्हारे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना ही उचित है। इस तरह मलयध्वज का अश्वमेध यज्ञ भंग हो गया। फिर से मलयध्वज पुत्र कामेष्टि यज्ञ का तैयारी करने लगा। इसमें कुछ और समय बीत गया। एक शुभ दिन में वह अपने पत्नी के साथ यही यज्ञ करने लगा। उसी हवन कुंड से एक बहुत प्यारी सी स्वर्ण वस्त्र पहनी हुई सर्व अलंकारों से भूषित एक बालिका निकली।
वह लगभग 3 साल की थी। अधरों में मंद मुस्कान और आंखों में करुणा की परछाई थी। जब वह मलयध्वज और कांचनमाला के बीच खड़ी हुई तो आकाश से फूलों की वृष्टि हुई। राजा और रानी उस बालिका को देखकर पुलकांकित हो उठे। उसकी दिव्य सुंदरता को देखकर कांचनमाला एक आम माता की तरह सहज ही चिंता में पड़ गई। इस दिव्य कन्या का वर कहाँ और कैसे होगा। बालिका का नाम तटातगई नाम रखा गया। ऋषि मुनियों ने ततास्तु कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कन्या देवी मीनाक्षी की ही अवतार है। उन्होंने यह भविष्यवाणी भी दी कि यह कन्या महादेव से विवाह कर स्कंद जैसे पुत्र को पाएगी और वे सबको आशीर्वाद देकर चले गयी।
तटातगई जो एक तमिल शब्द है, उसका अर्थ जो सदैव सभी सद्गुणों से भरपूर है। इस शब्द का और एक अर्थ भी निकाल सकते हैं कि वह जो अतुलनीय है। तटातगई राजभवन में पलने लगी। उसका सौंदर्य और सौम्यता ने सबका मन मोह लिया। इस दिव्य सृष्टि होने के कारण पूरी नगरी सर्वदा आनंद और उल्लास से भरा हुआ था। जब भी नगरवासियों ने तटातगई को देखा तो वे आश्चर्यचकित और स्तंभित हो जाते थे। अनायास ही वे हाथ जोड़कर प्रणाम किया करते थे। जहाँ भी जाती वह जगह एक सुगंधमय, संगीतमय और प्रकाशमय से वातावरण छा जाता था।
तटादगई राजकन्या थी, इसलिए उसे सब तरह की शिक्षाएं दी गईं। वेदों और शास्त्रों के अलावा युद्ध कला की प्रशिक्षा भी दी गई। छोटी सी तटादगा के लिए युद्ध कला भी बाएं हाथ का खेल था। आखिर वह स्वयं दुर्गा माता का ही अवतार थी। तटादगई अपने माता पिता की आंखों का तारा बन गई थी। जैसे ही युवती बनी, उसकी दिव्य सुंदरता भी बढ़ती गई। लेकिन एक नई समस्या खड़ी होगी। तटादगई को एक अलौकिक तीसरा स्तन भी था, इसलिए उसके माता पिता बहुत ही चिंतित होने लगे।
मालेध्वज और कांचन माला भगवान से ही यही प्रार्थना करने लगे कि यह समस्या किसी भी तरह सुलझ जाए। एक दिन जब देवी मीनाक्षी मंदिर में वे दोनों पूजा अर्चना आदि कर रहे थे, तो अचानक गर्भगृह से अशरीरी वाणी सुनाई दी। हे राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी कन्या दिव्य कन्या है। उसके वर स्वयं चक्रनाथ महादेव ही हैं। रानी बनकर जब वह दिग्विजय पर निकलेगी और जिसे देखकर वह लज्जित होकर अपने आंखें झुकाएगी, समझिए वही उसका वर है। उसके एक स्तन भी अदृश्य हो जाएगा। माता पिता बहुत आनंदित हुए और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे।
सही समय पर तटादगई युवरानी बन गई। एक शुभ अवसर पर भारत के सभी पावन नदियों से जल ले आकर वेद और मंत्र उच्चारण के बीच तटादगई का दिव्य राज्याभिषेक हुआ। महामंत्री सुमति द्वारा इस गौरवपूर्ण कार्य का सुसमापन हुआ। बच्चों, इससे यह पता चलता है कि पौराणिक काल में ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक समय में भी, और वह भी दक्षिण प्रांत में, महिलाओं के लिए इतना सम्मान मिलता था। विशेषतः राजाओं ने बेटे बेटियों में कभी किसी भी तरह के भेदभाव नहीं देखा करते थे।
कुछ दिन पश्चात ही मलेध्वज राजा भगवान महादेव की शरण में चले गए। कांचन माला के वियोग की सीमा ही नहीं था। प्रिय तटातगई ने अपने दुख को सहन कर अपने पिताश्री की अंतिम संस्कार विधिवत की।
मलेध्वज के निधन के पश्चात रानी तटातगई पांड्य देश के सिंहासन पर विराजमान थी। अपने पिता के जैसे ही धर्म के पद पर राज्य करने लगी। ऋषि मुनियों एवं महामंत्री सुमति के निर्देशानुसार राज्य करने लगी। वह स्वयं देवी मीनाक्षी होने के कारण पूरा देश मानो स्वर्ग लोक ही बन गया हो।
कांचन माला पति के वियोग से बाहर निकलने लगी और प्रिय पुत्री की करुणामय छाया में उसे सांत्वना मिली। कांचन माला के संबंध में एक और प्रश्न उठता है, और वह है कि मानव जीवन होकर भी कैसे साक्षात देवी उसकी बेटी बन सकती है।
जानते हो बच्चों, गंधर्व और किन्नर जैसे विद्याधर का भी एक वर्ग होता है, एक ज्ञान के कोष होते हैं। उनमें विश्ववसु नामक एक विद्याधर था, जिसकी विश्ववती नामक एक बेटी थी। बड़ी सुशील, सुंदर और परम ज्ञानी थी। एक दिन वह अपने पिता के पास जाकर कहने लगी, पिताश्री, मेरा मन देवी पार्वती की ओर ही जा रहा है। मैं इन्हें पाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं मुझे क्या करना है।
बच्चों, इस घटना को हम इसीलिए कह रहे हैं कि यही विश्ववती आगे जाकर कांचनमाला बनने वाली है। अब ये कहानी आगे सुनो। विश्ववसु अपने बेटी को पास बिठाए और कहने लगे, पुत्री, जगन माता देवी को पाना बहुत ही कठिन है, परंतु असंभव तो नहीं है। मैं तुम्हें देवी के मंत्र का उपदेश दूंगा, तुम उससे लाभ ले सकते हो। मंत्र उच्चारण और मनन के लिए सही जगह भी तो चाहिए। दक्षिण भारत में द्वादशांत नामक एक स्थान है, जो परम योगियों के लिए तपस्या करने का उचित स्थान है। कलयुग में यही जगह मदुरई नाम से सुप्रसिद्ध होने वाला है। इसके प्रसिद्ध होने का मूल कारण तुम बनने वाली हो। यह कहकर विद्याधर ने अपनी पुत्री विश्ववती को आशीर्वाद दे दिया।
विश्ववती की इस घोर तपस्या से माता देवी पार्वती के मन में करुणा भर आई। दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत सहस्त्र कोटि सूर्यों की आभा फैलाती हुई देवी पार्वती विश्ववती के सामने प्रकट हुई।
तब विश्ववती ने इस श्लोक को कहा। उद्यत भानु सहस्र कोटि सदृशाम केयूरहारोज्ज्वलाम बिम्बोष्टिम स्मिदंत पंकजिराम पीताम्बरालंकृताम विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदाम तत्त्वस्वरूपाम शिवाम मीनाक्षीम प्रणतोस्मि संततमहम् कारुण्यवारानिधिम्।
तब सुमधुर वाणी में उसने विश्ववती से पूछा, अर्थात पार्वती ने पूछा, कहो पुत्री, तुम क्यों ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो?
विश्ववती बोली, हे माते, आपके दर्शन के लिए ही आंखों तरसती थी, अब मैं धन्य हो गई हूँ। इसके पश्चात और क्या वर मांगो? फिर भी एक अभिलाषा है, जानती नहीं हूँ कि यह चाह उचित है या भी नहीं।
कहो पुत्री, जो भी वर मांगोगे वह उचित ही होगा।
माँ, आप तो जगत जननी हैं, तीनों लोकों की ही नहीं बल्कि अखिलांत कोटि ब्रह्मांड नायकी भी है, परंतु आप किसको माँ करके पुकारेंगे और कैसे, उसे मैं अनुभव करना चाहती हूँ।
पुत्री, तुम कहना क्या चाहती हो? बोली मृदुभाषिणी।
हे माते, एक जन्म में ही सही मैं आपकी माँ बनना चाहती हूँ। आप मेरी आत्मजा बनकर मुझे माँ पुकारे, यही मेरी इच्छा है।
देवी मीनाक्षी बोली, विश्ववती, मैं तो पराशक्ति हूँ, तुम तो विद्याधर की पुत्री हो। इस रूप में तो हम माँ पुत्री नहीं बन सकती और साधारण मनुष्य की तरह मैं जन्म भी नहीं ले सकती। इसका एक ही उपाय है, इसी नगरी में कलियुग में पांड्य देश का राजा शिवजी का भक्त जो मलयध्वज नाम से राज्य करेगा उसकी अर्धांगिनी बनकर तुम पटरानी बनने वाली हो, तब मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हें माँ बुलाऊंगी, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
बच्चों, अगली कड़ी में हम तटातगई का दिग्विजय और उसके परिणय संबंधित चर्चा करेंगे।